15 प्रत्युषा में पक्षियों की चहचहाट से मैं जागा। गवाक्ष खोलकर बाहर देखा। क्षितिज की रेखाओं से अंधकार हटने लगा था। गंगा के रूपाले बहाव ने कोहरे का अंशुक बांध रखा था। समस्त हस्तिनापुर धीरे धीरे जागृत हो रहा था। दूसरा एक सूखा उत्तरी लेकर मैं कच्छ से बाहर निकला। इस समय वहाँ कोई न होगा, अतः गंगा के पानी में जी भरकर स्नान कराऊँ, यह सोचकर मैं घाट की ओर चलने लगा। आसपास सारी सृष्टि कोहरे की चादर को अब भी हटाने को तैयार नहीं थी। सारे मार्ग और राजभवन धुंधले और अस्पष्ट कोहरे में बड़े ही मनोहर लग रहे थे। गंगा के तट पर स्थित मंदिर में एक घंटी बज रही थी। उस नीरव शांति में बस वही एक ध्वनि स्पष्टता सुनाई दे रही थी। उस ध्वनि की ओर मैं चल पड़ा। माता ने मुझको जो चेतावनी दी वह याद आई, गंगा के पानी में मत घुसना। मैं मन ही मन हंस पड़ा, माँ कितनी डरपोक है, वह क्या मुझको दूध पीता बालक समझती है? अब तो पूरे 16 वर्ष का किशोर हूँ मैं, उस पानी से मुझको कैसा डर। विचारों में डूबा हुआ मैं घाट पर आ गया। अपने साथ जो उत्तरी लाया था उसे एक सीढ़ी पर रख दिया। इस अधरी को मैं पहने हुए था उसको कसकर बांधा और सामने देखा। 10-12 हाथ तक पात्र स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था और सब कुछ सफ़ेद कोहरे से ढका हुआ था। मैंने उस पात्र को आदरपूर्वक नमस्कार किया और फिर दोनों हाथ आगे कर सिर के बल मैं पानी में कूद पड़ा। पानी का स्पर्श गर्म लगा। लगभग घंटा भर तक मैं उस पानी में मनमानी डुबकियां लगाता रहा। घड़ी भर बाद कोहरा छटा। मैं पानी में से घाट की ओर पानी काटता हुआ आया। भीगा हुआ अधरी बदला, भीगा वस्त्र पानी में डुबा कर फिर निचोड़ कर मैंने सीढ़ी पर रख दिया। सामने देखा, दूर आकाश में सूर्यदेव धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। उनकी कोमल किरणें गंगा के पानी को गुदगुदा कर जगा रही थी। अंजलि में पानी भरकर भक्तिभाव से उसका अर्घ्य मैंने सूर्यदेव को दिया। कितना भव्य रमणीय रूप था उनका। मुझको प्रतिदिन उनका जो रूप दिखाई पड़ता था उसमें सदैव एक ही न्यूनता नूतन प्रभा दिखाई पड़ती थी। प्रतिदिन निराला आविष्कार, प्रतिदिन निराले दीप्तिवरय। एक दिन की दर्शनीय शोभा दूसरे दिन वैसे ही नहीं होती थी। उस शोभा में दूसरे दिन एक निराला ही आकर्षण पैदा हो जाता था। उसको देखते ही मुझसे अचानक उत्साह का उफान आ जाता था। हजारों योजन दूर स्थित उस तेज में और मुझ में भी कुछ अंतर नहीं, ऐसा प्रतीत होता। मुझे लगता जैसे मेरा शरीर कुछ हल्का हो गया हो। मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते, आंखें अपने आप ही बंद हो जाती। मैं मन ही मन उस तेज का चिंतन करने लगता। लक्ष्य योजनों तक मुझको केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता, अत्यंत तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी लेकिन शीतल और स्पृहणीय लगने वाला प्रकाश। अकारण यह ऐसा अनुभव होता जैसे उस तेज से अपना कोई संबंध हो। विश्व के संपूर्ण अंधकार को दूर करने वाला वह अखंड महादीप मुझसे जैसे कुछ अज्ञात धागों से जुड़ा हुआ हो। मैं अपने आप को भूल जाता और उन धागों के सहारे दूर दूर ऊंचा और ऊंचा जाने लगता। आज तो तेज का रूप अत्यंत ही मनोहारी था। मैंने शांतिपूर्वक खांस जोड़ी और आंखें बंद कर ली। मैं प्रकाश के असीम समुद्र की केवल एक लहर बन गया। उस लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं, और वह लहर शायद अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती भी नहीं थी। उस असीम सागर की अनेक लहरों में से केवल एक लहर थी वह। शायद किसी ने मेरे कंधों को स्पर्श किया। पहले पल तो उसकी स्पष्ट जानकारी ही नहीं हुई, लेकिन कोई मेरे कंधों को जोर से हिला रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली और मुड़कर देखा। अत्यंत शांत मुखाकृति वाले एक वृद्ध मेरी ओर देख रहे थे। उनके दाढ़ी के, सिर के और भौहों के सभी केश सफ़ेद बादल की तरह श्वेत शुभ्र थे। भव्य मस्तक पर भस्म की लंबी रेखाएं थीं। उनका हाथ मेरे कंधे पर अब भी ज्योपाते था। वह हाथ मुझको बड़ा भारी और सशक्त लगा। कौन है ये वृद्ध? प्रत्यक्षण में प्रश्नों के बाढ़ मन के धनुष पर चढ़ाने लगा। लेकिन नहीं, मैंने उनको कहीं नहीं देखा। अत्यंत स्नेहसिक्त स्वर में उन्होंने मुझसे पूछा, वत्स तुम कौन हो? मैं सूतपुत्र कर्ण। सूतपुत्र कर्ण? कौन से सूत के पुत्र हो तुम? चंपा नगरी के अधीरज जी का। अधीरज का जी? लेकिन आप? मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं भीष्म हूँ। उनकी दाढ़ी के बाल हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। भीष्म, पितामह भीष्म, कौरव पांडवों के वंदनीय भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, कुरुवंश के मंदिर के कलश भीष्म, योद्धाओं के राज्य के ध्वज भीष्म। क्षण भर मेरा मन विमूढ़ हो गया। कुरुवंश का साक्षात पराक्रम मेरे सामने गंगा के किनारे खड़ा था। एक विशाल वटवृक्ष के सम्मुख घास के छोटे से तृण की तरह मैं खड़ा था। क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत जैसे तैसे अपने को संभाल कर मैंने झुक कर उनको अभिवादन किया। उन्होंने तत्क्षण मुझको ऊपर उठाया। अत्यंत मृदु स्वर में वो बोले, तुम अपनी पूजा में लीन थे, मैंने तुमको जगा दिया, इसलिए तुम छुप तो नहीं हो गए। नहीं, मैं बोला, सचमुच वत्स, तुमको जगाने की इच्छा मैं रोक नहीं सका। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वे बोले, आज 3 दशाब्दियां हो गई, प्रतिदिन नियमित रूप से मैं इस समय गंगा के घाट पर आता हूँ, लेकिन इस हस्तिनापुर का एक भी व्यक्ति कभी मुझसे पहले यहाँ नहीं आया। मैंने किसी को नहीं देखा, तुम वह पहले व्यक्ति हो जिसको मैं आज देख रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहूँ। हाँ, और इसीलिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में तुमको जगाया। मेरे दोनों कानों के कुंडलों को देखते हुए बोले, इन कुंडलों के कारण तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ये जन्मजात है, मैंने कहा, इनका सदैव ध्यान रखना। धीरे धीरे पैर रखते हुए वे घाट की सीढ़ियों पर उतरने लगे। पर्वत की तरह भव्य दिखाई देने वाला उनका वह लंबा शरीर ओझल होने लगा। गले तक पानी में जाकर वे खड़े हो गए। उनके सिर के बाल पानी के लहरों के साथ तैरने लगे। शुभ्र केशों से आच्छादित उनका मस्तक गंगा के जल के ऊपर शुभ्र कमल की तरह सुशोभित हो रहा था। मैं जहाँ खड़ा था वहीं से मैंने उनको वंदन किया। आर्द्र उत्तरी कंधे पर डालकर मैं राजभवन की ओर लौटा। पितामह भीष्म के दर्शनों से हस्तिनापुर में मेरे प्रथम प्रभात का प्रारंभ हो गया था। उस विचित्र संयोग पर मुझे आश्चर्य हुआ। जिन पितामह भीष्म को देखने के लिए मैं कल दिन भर विचार कर रहा था, वे स्वयं ही आज मुझको मिल गए थे। वे भी अकेले गंगा के इस घाट पर और प्रातःकाल की इस रमणीय वेला में। कितने मधुर हैं उनके स्वर। मंदिर के गर्भगृह की तरह उनकी मुखाकृति कितनी शांत और पवित्र है। मुझ जैसे एक साधारण सूत पुत्र की कोई बात उनको अच्छी लगती है। कौरवों के ज्येष्ठ महाराज मुझ जैसे सूत पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर स्नेह से पूछताछ करते हैं। सचमुच ही वीर पुरुष यदि अभिमान रहित हो तो वह कितना महान लगने लगता है। जिस गुरुकुल में पितामह जैसे वीर और गर्व रहित श्रेष्ठ पुरुष ने जन्म लिया हो, वह कुल निश्चय ही धन्य है। मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ जो ऐसे राजभवन में रहने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। अब तो बार बार इन प्रभु पुरुष श्रेष्ठ के दर्शन मुझको हुआ ही करेंगे। वे दुशांत और तेजस्वी आंखें मुझ पर भी कृपा दृष्टि रखेंगी। अपने जीवन में जिन 3 व्यक्तियों पर मेरा प्रेम था, उसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया था, पितामह भीष्म। 16 जैसे मैं राजभवन पहुंचा, पिताजी ने मुझको तैयार रहने को कहा, क्योंकि यदुशाला में जाना था, इसलिए मैं तुरंत ही तैयार हो गया। शोण तो जाने के लिए तैयार होकर बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने जो पेटिका दी थी वह मैंने एक आले में संभाल कर रख दी थी। उस पर पारिजात के 4 पुष्प चढ़ाए, उसको वंदन कर मैं धीरे से बोला, माँ मुझको आशीर्वाद दो, तुम्हारा वसु जीवन के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आज ले रहा है। युद्धशाला में जाने का आज उसका पहला दिन है। पिताजी ने बाहर से पुकारा, कर्ण शोण जल्दी चलो। मैंने गवाक्ष से बाहर झाँक कर देखा। सूर्यदेव हंसते हुए पूर्व क्षितिज के संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशवान कर रहे थे। उनका प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ने के कारण उनके 2 रूप स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे, एक आकाश के सूर्यदेव और एक पृथ्वी के सूर्यदेव। मैंने शोण का हाथ अपने हाथ में लिया और कच्छ से बाहर निकला। हम तीनों यदुशाला में आए। कल की अपेक्षा आज तो यहाँ बहुत अधिक युवक एकत्रित थे। वे सभी मध्य में स्थित उस चबूतरे के चारों ओर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। सबके सम्मिलित शांत और गंभीर स्वर सुनाई पड़ रहे थे, शायद प्रातःकाल की प्रार्थना हो रही थी। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम। प्रार्थना बहुत देर तक चलती रही। मैंने पिताजी को वापस जाने को कहा, अनुशासन रखना, यह कहकर वे लौट गए। मैंने उस भव्य अखाड़े पर दृष्टि डाली। वह संपूर्ण क्रीड़ांगन शांत था, लेकिन क्षण भर बाद ही पुरवैया घटाओं के गर्जना की तरह वातावरण बदलने वाला था। विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की आवाजें आपस में मिलकर एक विचित्र ध्वनि पैदा करने वाली थी। फिर समस्त युवकों की उत्साहवर्धक किलकारियों से तो वह ध्वनि और भी तीव्र होने वाली थी। प्रार्थना समाप्त हुई। बीच में बैठे गुरुदेव द्रोण शांतिपूर्वक उठकर खड़े हो गए। अपने दोनों हाथ उठाकर उन्होंने सभी शिष्यों का आशीर्वाद दिया। मैं शोण को लेकर आगे बढ़ा। हम दोनों ने झुककर गुरुदेव को प्रणाम किया। मुझको आशा थी कि अपना हाथ उठाकर वे हमको भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन इतने में ही अर्जुन के सामने आ गया और वे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ बातें करते हुए वहां से चले गए। हमारी ओर देखने तक का समय गुरुदेव को नहीं मिला। उस यदुशाला में यह मेरा पहला ही दिन था। किसी ने मुझसे यह कहा था कि गुरु के आशीर्वाद बिना विद्या सफल नहीं होती, इसलिए कौरवों के उन महान गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए मैंने उनको प्रणाम किया। परंतु उसी समय युवराज अर्जुन बीच में कहाँ से आ टपका। यहाँ आने के लिए उसको कोई और समय नहीं मिला, या गुरुदेव कुल उसके ही थे, या जैसा कि गुरुदेव ने कल कहा था उसके अनुसार उनका आशीर्वाद भी कुल क्षत्रियों के लिए ही था। यदि यह सच है तो फिर मुझ जैसे सूत पुत्र को वह कैसे मिल सकता है, और यदि मिल भी जाए तो उससे मैं क्षत्रिय थोड़े ही हो जाऊंगा, और क्षत्रिय होकर अंततः मुझको करना ही क्या है। केवल इन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं क्षत्रिय होना क्यों स्वीकार करूँ। आशीर्वाद न मिले भी तो कोई बात नहीं, मैं रहूँगा शूद पुत्र ही, पिता अधीरथ और राधा माता का शूद पुत्र कर्ण ही रहूँगा। इन गुरु का आशीर्वाद क्षत्रियों के लिए है, इन गुरु का ज्ञान क्षत्रियों के लिए है, ये गुरु ही क्षत्रियों के लिए हैं, वे हमें कैसे मिल सकते हैं। तो फिर आज वाले दिन किसको गुरु बनाया जाए, किसके आशीर्वाद से विद्या प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जाए। तो संसार में शूद पुत्र का गुरु बनने के लिए कौन तैयार होगा, कोई नहीं। अर्जुन ठीक इसी समय क्यों आया, ये गुरुदेव द्रोण उसको इतना क्यों मानते हैं, वे दोनों गुरु और शिष्य हैं। मेरा मन खिन्न हो गया, सिर झुकाकर मैं विचार करने लगा, राजकुल में मेरा जन्म नहीं हुआ, यह क्या मेरा दोष है? क्या जन्म लेने वालों को अपनी इच्छानुसार कभी जन्म मिला है? जन्म संबंधी इस ऊर्जा निष्ठा का किसने निर्णय किया है? मानव किस बात से श्रेष्ठ बनता है? अपने श्रेष्ठ गुणों से नहीं ना, लेकिन मेरी बात यहाँ कौन मानेगा? मेरा आज का यह दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा क्या? मैं तो कब से धनुष के बाणों कैचुक परीक्षणों के लिए उतावला हो रहा हूँ। ठीक, कुछ दिन शायद मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए ही आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। निराश मन से मैं पत्थर के उस चबूतरे के चारों ओर पागल की तरह चक्कर लगाने लगा। कभी इच्छा होती कि गुरुदेव द्रोण जहाँ है वहाँ दौड़ता हुआ जाऊँ और उनसे साफ साफ कहूँ, गुरु वह होता है जो शिष्य के मन को जानता है। फिर क्या बात है कि एक शिष्य आपके आशीर्वाद के लिए पानी से बाहर निकाली हुई मछली की तरह तड़प रहा है, लेकिन आपको अब भी पता नहीं है। आप उस अर्जुन को इतना महत्व क्यों देते हैं? उसमें ऐसी क्या विशेषता है? मेरी ओर देखिए, मेरे कानों में चमकने वाले कुंडल हैं, कदली की तरह एकदम पीली मेरी दशा अभेद्य है। दूसरे क्षण पिताजी का वह कथन याद आया, अनुशासन में रहना। कैसे रहूं अनुशासन में? या गुरुदेव द्रोण ने मेरी ओर देखा तक नहीं, इसलिए रोता हुआ वापस चला जाऊं? क्या करूं, क्या करूं? मेरे सदैव की तरह पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखा, तब तो लाल लोहे के गोले की तरह सूर्यदेव आकाश के नीली छत को जला रहे थे। मेरी निराशा क्षण भर में 9-11 हो गई। बस वहां सामर्थ्यशाली स्टेज के अतिरिक्त अधिक योग्य गुरु इस त्रिभुवन में दूसरा कौन होगा? किसी अन्य के आशीर्वाद की भी मांगने की आवश्यकता ही क्या है? आज से मेरे वास्तविक गुरु यही हैं, आज से बस इन्हीं की पूजा, आज से इन्हीं की आज्ञा। तत्क्षण मैं पत्थर के उस चबूतरे पर चढ़ गया, वहाँ पुष्पों से सजा हुआ धनुष रखा था, वह मैंने हाथ में उठा लिया और जितना ऊंचा उठा सकता था उतना ऊंचा उठाकर मैं बोला, संसार के समस्त अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव, आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझको आशीर्वाद दो, मुझको मार्ग दिखाओ। उस धनुष को मस्तक से लगाकर मैंने झुककर उस तेज को प्रणाम किया, शोण न जाने कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे भी कहा, शोण सूर्यदेव को नमस्कार कर उनसे आशीर्वाद मांग। उसने भी विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। थोड़ी देर बाद मैं धनुष नीचे रख दिया। चबूतरे की सीढ़ियों पर उतरने लगे, मेरा मन अब शांत हो गया था। सामने गुरुदेव द्रोण और अर्जुन चबूतरे की ओर आ रहे थे। अर्जुन मेरी ओर देखकर हंसा, लेकिन मुझको हंसी नहीं आई, मुझको ऐसा लगा जैसे उसके हंसने में भी एक प्रकार का व्यंग हो। मुझको पितामह भीष्म की याद आई। इस अर्जुन के पितामह थे वे, लेकिन दोनों में कहीं समता नहीं थी। दोनों के स्वभाव और व्यवहार में कितना अंतर था। जाते जाते कुछ पूछने के विचार से अर्जुन ने मुझसे पूछा, यह कौन है? मेरा छोटा भाई है, मैंने अभिमानपूर्वक कहा। यह अभी शाला में आएगा क्या? गुरुवर द्रोण ने पूछा। जी हाँ, मैंने उत्तर दिया। जाओ, उस और कृप हैं, उनके पथक में सम्मिलित हो जाओ। मैं कुछ भी न कहा, उनको नमस्कार करने की भी मेरी इच्छा नहीं। जाते जाते मैंने अर्जुन की ओर मुड़कर देखा, वह तो आश्चर्य से मेरे कानों के कुंडलों की ओर एकटक देख रहा था। हम कृपाचार्य के पथक में आए। कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी के साले थे। उनकी देख रेख में अनेक युवक धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। क्षण भर के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि ये ढेर सारे राजकुमार क्यों जहाँ तहाँ अपनी अकड़ दिखा रहे हैं? उस दुर्योधन का स्वरूप एक में भी है क्या? एक भी ऐसे है क्या जिसकी चाल दुर्योधन की चाल की तरह शानदार हो? है कोई ऐसा माइका लाल जिसकी दृष्टि उसकी दृष्टि की तरह भेदक हो? इतने में युवराज दुर्योधन ही सामने से आता मुझको दिखाई दिया। उसके पास जाएंगे तो वह निश्चय हमारी कुशल क्षेम पूछेगा, ये सोचकर मैं उसके ओर चलने लगा। उसके पास भी गया, लेकिन युवराज दुर्योधन नहीं था। उसमें दुर्योधन में अद्भुत क्षमता थी। राजहंस के दो बच्चों को जैसे अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, वैसे ही वे दोनों नहीं पहचाने जाते थे। यह कौन होगा, मैं विचार करने लगा। उसके देह पर जो वस्त्र थे उनसे यह तो निश्चित था कि यह युवराज था, लेकिन यह युवराज किनमें से था? कौरवों में से या पांडवों में से? चूँकि दुर्योधन में और इसमें बड़ी क्षमता है, इसलिए कौरवों में से ही होगा। लेकिन कौरवों में से यह कौन है? इतने में ही कृपाचार्य ने उसको पुकारा, दुशासन। वह जल्दी जल्दी उनकी ओर चला गया। तो वह दुशासन था। आह, दुर्योधन में और उसमें कितनी समता थी। एक को छिपाइए और दूसरे को दिखाइए। युवराज दुर्योधन और युवराज दुशासन, दोनों की चाल में वही शान थी, दोनों की दृष्टि में वही भेदकता थी। कहीं दुशासन दुर्योधन की प्रतिछाया ही तो नहीं था। 17. पहले 15 दिन तक मैं युद्धशाला के शस्त्रों का केवल परिचय प्राप्त कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ सीखने की स्थिति में नहीं था। गुरु भरद्रोण ने पहले ही दिन मेरे साथ जो विचित्र व्यवहार किया था, उससे मेरा मन किसी बात में रम नहीं रहा था। कभी मन में आता कि युवराजों को इस कमारखाने में केवल सुतपुत्र के रूप में उपेक्षित होने से तो अच्छा है कि एकदम चंपा नगरी का मार्ग पकड़ लिया जाए। युद्ध विद्या की शिक्षा लेकर कुछ आखिर मुझको करना क्या है? अब कौन सा महायुद्ध होने वाला है, और हो भी तो उसमें मेरा उपयोग ही क्या है, केवल एक सारथी के रूप में ही ना? तो फिर सारथी को इस युद्ध विद्या की शिक्षा की क्या आवश्यकता है? उसको तो घोड़ों की परीक्षा करनी चाहिए और उसकी उच्छृंखल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना सीखना चाहिए। क्या यह काम मैं चंपा नगरी में रहकर नहीं कर सका? दूसरे क्षण फिर यह विचार आता कि ऐसा करने से कैसे काम चलेगा। युद्ध विद्या केवल युद्ध के लिए ही सीखी जाती है। जिसके भुजाओं में शक्ति होती है वह सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। इस युद्धशाला में मैं शक्तिशाली बन सकूंगा। इस युवराज अर्जुन को भी दिखा दूंगा कि संसार में वही अकेला धन उधर नहीं है, लेकिन उस बेचारे ने ही अंततः मेरा क्या बिगाड़ा है। उससे यह स्पर्धा मैं क्यों करूँ? स्पर्धा सदैव व्यक्ति को अंधा बना देती है। गुरुवर उससे स्नेह करते हैं तो उसमें उसका क्या दोष है? मेरी भी तरह वह भी एक युवक है। गुरु प्रेम करें या कौन शिष्य नहीं चाहेगा, और कौन ऐसा गुरु है जो भलीभांति परीक्षा किए बिना शिष्य को इतने समीप कर लेगा? यदि यही बात है तो गुरुदेव मैं भी आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। केवल एक धनुर्धर होने के कारण यदि आप अर्जुन को इतना स्नेह करते हैं तो मैं उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। परंतु मैं यदि धनुर्धर हो भी जाऊँ तो उसका क्या उपयोग? आप तो मुझको कभी अपना शिष्य मानेंगे ही नहीं। आपका हाथ मेरी पीठ पर स्नेहपूर्वक कभी नहीं फिर सकेगा, क्योंकि मैं सूतपुत्र हूँ और अर्जुन क्षत्रिय पुत्र है। क्षत्रिय कुल में ऐसी क्या विशेषता होती है? कुल की यह कसौटी किस लिए, क्या आवश्यकता है इसकी? परंतु यह बात भी कैसे कही जा सकती है? इस कुल के पूर्वजों ने अपने पराक्रम से शत्रुओं का निकंदन कर इस गुरुकुल की और राज्य की कीर्ति फैलाई, वह कुल श्रेष्ठ तो है ही। मेरे कुल के पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़ों की मालिश की है और उनकी वलगाएँ पकड़ी हैं। हमारी और क्षत्रियों की तुलना कैसे हो सकती है? वास्तव में यदि मैंने किसी राजकुल में जन्म लिया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन यह कैसे संभव था? वटवृक्ष पर रहने वाले कौवे को राजभवन के कलश पर बैठने वाले कपोत के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। छोड़ो भी, जिसको बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं होता उसका मनुष्य को इतना विचार नहीं करना चाहिए, और कुछ का भी कुछ समझ कर किसी के संबंध में अनादर भावना भी कभी नहीं रखनी चाहिए। सच तो यह है कि यदि युवराज अर्जुन गुरुवर पर इतना लाडला था तो इसका बुरा उसके भाई मान सकते थे। बात मुझको क्यों लगती है? मेरा और युवराज अर्जुन का ऐसा क्या संबंध है? कुछ भी तो नहीं है। मैं एक सूत पुत्र हूँ, वह एक युवराज है, उसका मार्ग दूसरा है और मेरा दूसरा। जीवन के मार्ग पर चलने वाले हम दोनों ऐसे यात्री हैं जो एक दूसरे से एकदम भिन्न है। जाओ युवराज अर्जुन, खूब बड़े बनो, अजय धनुर्धर बनो। यदि कभी अवसर आया तो यह सूत पुत्र कर्ण तुम्हारे रथ के घोड़ों को संभालने के लिए सारथ्य करेगा। मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अर्जुन हो या कोई और हो, मैं किसी के प्रति भी विद्वेष नहीं रखूंगा। यहाँ के सभी युवराजों के और मेरे मार्ग भिन्न भिन्न हैं। जन्म ने ही उनका निर्धारण कर दिया है, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है केवल इसलिए मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। मेरी भी इच्छा होती है कि केवल ध्वनि की दिशा में कहीं पर भी बार छोड़ूं, एक ही समय असंख्य बाण 200 दिशाओं में छोड़ूं। गुरु कौन है, इस बात का महत्व ही क्या है? महत्व की बात तो वास्तव में यह है कि विद्या के प्रति शिष्य में कितनी लगन है। मैं तन मन एक कर दूंगा, विद्या के लिए विद्या ग्रहण करूंगा, मैंने पक्का निश्चय कर लिया। 18. मेरे युद्धशाला का कार्यक्रम निश्चित हो गया था। एक महीने के भीतर ही मैंने शूल, तोमर, परिग्रह, प्रास, शतग्नि, खड्ग, पट्टिश, भुशुंडी, गदा, चक्र आदि अनेक शस्त्रों का परिचय प्राप्त कर लिया। धनुष की ओर मेरी विशेष रुचि होने के कारण धनुर्विद्या से संबंधित सभी शस्त्रों का मैंने ध्यानपूर्वक अभ्यास किया। केवल बाण ही अनेक प्रकार के थे। कर्ण बाण में 2 शूलाग्र होते थे, जब वो पेट में घुस जाता था तब बाहर निकलते समय आते भी बाहर निकल आती थी। नालिक बाण का फलक मोटा होता है तथा उसमें टेढ़े दांत होते थे, इसलिए शरीर में घुसने पर जब वह बाण बाहर निकाला जाता था तब अपने आसपास के शिराओं को तोड़कर ही वह बाहर निकलता था। लिप्त बाण के अग्रभाग में विषैली वनस्पति का रस लगा होने के कारण वह बड़ा दाहक होता था। वास्तविक बाण शरीर में घुस जाता था, लेकिन बाहर खींचने पर उसका केवल दंड ही हाथ में आता था और समस्त फलक ज्यों का त्यों लक्ष्य के भीतर शरीर में रह जाता था। सूचीबाण का अग्रभाग सूच्याकार और नुकीला होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म लक्ष्य भी उससे अचूक भेदा जा सकता था। विशेष रूप से आँख की पुतली को इस बाण से अचूक भेदा जा सकता था। जिम्म बाण जाता तो टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन लक्ष्य में बिल्कुल ठीक घुसता था। इनके अतिरिक्त गवास्थि अर्थात बैल की हाड़ का, गजास्थि अर्थात हाथी की हाड़ का, कपिश अर्थात काले रंग का, पूति अर्थात उग्र गंध वाला, कंकमुख, सुवर्ण पंख, नाराज, अश्वास्थि, आंजलिक, सन्नत पर्व, सर्वमुखी आदि बाणों के अनेक प्रकार थे। इन सब बाणों को लक्ष्य पर छोड़ने की शिक्षा में मन योग से ग्रहण करने वाला था। अपने शिष्यावस्था का एक एक क्षण मुझको इसी कार्य में लगाना था। पहले तीन वस्तुओं पर मेरा प्रेम था, गंगा माता, सूर्यदेव और राधा माता ने अत्यंत प्रेम से जो दी थी वह चांदी की पीठ का। परंतु युद्धशाला में आने के बाद उसमें एक वस्तु और सम्मिलित हो गई, वह वस्तु धनुष और बाण। 19 महाराज गलत का सारथ बाबा ने अनेक वर्षों तक बड़े उत्तम ढंग से किया था, परंतु आजकल वृद्धावस्था के कारण उनमें पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रही थी। उनकी सहायता के लिए महाराज ने गवलगण नामक सारथी के एक निपुण पुत्र को भी अपने निजी सेवा के लिए नियुक्त कर रखा था। कभी कभी महाराज उनको पुकारते थे, उसको सुनकर हम भी यह जान गए थे कि उनका नाम संजय है, लेकिन उनके बड़े होने के कारण हम उनको संजय काका कहने लगे। उनके और आचार्य विदुर जी के मुख में बड़ा ही साम्य था। उनका संजय नाम मुझको बहुत ही अच्छा लगा, उनका सारथी होना तो मुझको उससे भी अधिक अच्छा लगा। यूं ही कुछ न कुछ निमित्त बनाकर मैं उनसे बात करने का प्रयत्न करता। रथशाला में और पिताजी उत्तम जाति के घोड़े, रथ का सबसे अधिक उपयोगी औंगने का तेल, चक्र के लिए कौन सी लकड़ी टिकाऊ रहती, रथ चक्रों के आरों की संख्या कम होनी चाहिए या अधिक, उनका गति पर क्या परिणाम होता है आदि आदि अनेक मनोरंजक विषयों पर चर्चा किया करते थे। मुझसे तो वो सदैव कहते, कर्ण तू शुद्ध पुत्र है, तो सदैव यह याद रखना कि उत्तम जाति का घोड़ा कभी धरती पर नहीं बैठता है, रात में नींद के लिए भी, और कुलीन सारथी कभी रथमेल नहीं छोड़ता है प्राण जाने पर भी। एक बार जिस जगह पर बैठ गए वहां से फिर हटना नहीं। क्या कहते हैं काका, घोड़ा कभी धरती पर नहीं बैठता? मैं आश्चर्य से पूछता, हाँ इतना ही नहीं बल्कि खड़े खड़े नींद लेने वाला घोड़ा जब चार खुरों में से एक खुर उठाकर नींद लेने का प्रयत्न करे, तब यह समझ लेना चाहिए कि दीर्घ यात्रा के लिए वह निकम्मा हो चुका है। ध्यान रखो, घोड़ा सब प्राणियों में उत्तम प्राणी है। उत्तम? मैं यूं ही पूछता क्योंकि मेरी इच्छा होती थी कि वे निरंतर बोलते ही रहे। भारद्वाज पक्षी जैसे उनकी वाणी भी ऐसी मधुर थी, उनको सतत सुनते रहने की इच्छा होती। केवल उत्तम ही नहीं अत्यंत बुद्धिमान भी। कर्ण घोड़े पर बैठकर कभी घने जंगल में जाना पड़े और फिर बाहर आने के लिए मार्ग न मिले तो निश्चिंत होकर हाथ से वल्गा छोड़ दो। यह बुद्धिमान प्राणी तुझको ठीक उसी स्थान पर वापस ले आएगा जहाँ से तू चला होगा। घोड़ों की प्रकृति की ऐसी बहुत सी बातें काका बात करते समय बता जाते। उनके मुख से घोड़ों की विविध प्रकृतियाँ, व्याधियाँ और चालें, सब इस बातों का वर्णन सुनते हुए हमारा समय आनंद से व्यतीत होने लगा। सारथियों के कर्तव्य कर्म, धार्मिक विधियां, सभागृह के नियम आदि की भी वे हमको सूक्ष्म जानकारी देने लगे। अकला, अकूर आदि घोड़ों के खुरों के रोगों पर किस किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, यह उन्होंने व्याधिग्रस्त घोड़ों पर साक्षात प्रयोग करके हमको दिखा दिया। संजय काका राजभवन के सभी सारथियों के नायक थे, महाराज उत्तराष्ट्र, पितामह, महामंत्री विदुर, राजमाता और आमात वृषवर्मा, ये सभी लोग सभागृह में भी उनका सम्मान करते थे। ऐसे सबको प्रिय लगने वाले संजय काका उनसे घंटों गप्पे हाँकने में तल्लीन हो जाते थे। सारथ्य कर्म की निपुणता की बारीकियां बताया करते थे। कभी कभी मालाओं और घंटों से सुशोभित अपने रथ में मुझको और सोण को राजनगर में घुमा लाते थे। 20 एक दिन मैं और सोण यूं ही नगर में घूमने गए थे। सदैव की भांति घूम घाम कर हम लोग लौटने लगे। राजप्रसाद के समीप आ चुके थे, इतने में सामने से आता हुआ एक राजरथ हमको दिखाई दिया। उस रथ के चारों ओर झिलमिलाते हुए वस्त्रों के पर्दे लगे हुए थे। रथ के घोड़े श्वेत शुभ्र थे, मुझको उनका रंग बहुत ही अच्छा लगा। वे पांच पुष्ट शरीर यष्टि वाले घोड़े दौड़ने वाले सामने से आ रहे थे। मैं उन घोड़ों की ओर मुग्ध होकर देख रहा था। उनमें से एक घोड़ा जब तब अपने सिर का एक झटका देता था। बड़ी सरलता से वे उस रथ को आगे ला रहे थे। इतने में सोना अकस्मात मेरे हाथ में से अपना हाथ छुड़ाकर उस रथ की ओर ही दौड़ने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह पागल की तरह उस रथ की ओर क्यों दौड़ रहा था। क्षण भर में वह रथ के सामने पहुंच गया, मुझको उसकी मूर्खता पर क्रोध आ गया। मैं उसके पास पहुंच जाऊं पाऊंगा इससे पहले ही वह रथ के नीचे आ जाएगा, क्या किया जाए, भय से शरीर रोमांचित हो गया। क्षण भर में यदि मैं वहां से नहीं हटा तो रथ के नीचे अवश्य आ जाएगा, यह सोचकर प्राणों के वैसे अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर मैं जोर से चिल्लाया, शोर रुक जा। इतने में झटपट झुक कर उसने बड़ी फुर्ती से काले रंग की कोई वस्तु उठाई। शोर को देखकर सारथी ने अत्यंत कुशलता से सभी घोड़ों को रोका। बड़ी कठिनाई से वे शोर के निकट आकर जैसे तैसे रुके। एक घोड़े के मुख का झाग तो सीधा शोर के सिर पर पड़ रहा था, लेकिन उसका इन बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। हाथ में लगी काली वस्तु को वह प्रेम से सहला रहा था। मैं हाँफता हुआ उसके पास गया। उसको देखते ही हाँ की वस्तु मुझको दिखाता हुआ वह व्याकुल होकर बोला, भैया यह देखो, यह अभी रथ के नीचे आ जाता। मैंने देखा उसके हाथों में बिल्ली का बच्चा था। अपनी छोटी छोटी आंखों को रह रह कर बंद करता हुआ वह अत्यंत करुण स्वर में चिल्लाने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि शोर से अब कहूँ तो क्या कहूँ। उस पर क्रोध भी नहीं किया जा सकता था। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यह क्या वही शोर है जो हमारे रथ के पीछे रोता हुआ दौड़ता हुआ आया था? वह बिल्ली के बच्चे को पीठ से पर हाथ फिराने लगा। वह इतना प्रसन्न था मानो स्वर्ग मिल गया हो। उसका उत्तरी कंधे पर से सरक कर नीचे धूल में गिर पड़ा था। उसका भी उसको भान नहीं था। इतने में उस बच्चे की माँ कर्कश शब्द करती हुई कहीं से चिल्लाती आई। अपने बच्चे को वह इधर उधर ढूंढने लगी, घू घू करती हुई हमारे पैरों पर लौटने लगी। मैंने शोर से बच्चा नीचे रख देने को कहा। जैसे ही शोर ने बच्चा नीचे रखा, खप से उसकी गर्दन अपने मुंह में पकड़कर गुर्र गुर करते हुए बिल्ली क्षण भर में ही जाने का अदृश्य हो गई। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वह अब तक कहाँ भटक रही थी? यदि इस समय शोर ने साहस न किया होता तो उसका वह कोमल सुकुमार शिशु क्या राजमार्ग की धूल में न मिल गया होता? क्या उसकी यह करुण ध्वनि किसी को सुनाई पड़ सकती थी? इस समस्त घटना ने मुझको एकदम राधा माता की याद दिला दी। उसकी स्नेहमय मूर्ति आंखों के सम्मुख खड़ी हो गई। आज तक उसने मेरा कितना ध्यान रखा था। माता हो तो राधा माता जैसी। मैं चंपा नगरी की स्मृतियों में खो गया। इतने में उस राजरथ के रथनीर पर बैठे हुए सारथी ने कहा, जल्दी कीजिए, झटपट अलग हटिए, रथ में राजमाता कुंती देवी हैं। राजमाता कुंती देवी? मैंने शोर की बाँह पकड़कर उसको झट से एक ओर खींच लिया। रथ धड़गड़ आवाज करता हुआ धूल उड़ाता हुआ दौड़ने लगा। मैंने उसमें जूते श्वेत शुभ्र घोड़ों की ओर पुनः उत्सुकता से देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रथ में 6 घोड़े जोड़ने की भलीभांति व्यवस्था होने पर भी केवल 5 ही घोड़े जोड़े गए थे। एक घोड़े का स्थान जो कि रिक्त छोड़ दिया गया था। राजप्रसाद में घोड़े नहीं रहे हैं क्या? मैंने मन में कहा। रथ चला गया। शोर का उत्तरी रथ चक्र के नीचे आ गया था। वह उसने उठा लिया, उसके धूल झाड़कर उसको उसने फिर से कंधे पर लपेट लिया। हम अपने आवासीय पर कक्ष की ओर चलने लगे। मेरा हाथ शोर के कंधे पर था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।